स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यहोशापात का पुत्र परमेश्वर के मार्ग पर न चल करके दुष्टता के मार्ग पर चला और परमेश्वर ने उसे दंडित भी किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नए विषयों को देखेंगे। मेरे मित्रों, एक ईश्वर भक्त राजा का दुष्ट पुत्र जिसने अपने पिता के सुधार कार्य पर पानी फेर दिया, इसका कारण था कि उसने एक अनाचारी स्त्री से विवाह किया था। कहने का मतलब है अविश्वासी स्त्री से। परमेश्वर ऐसे विवाह को अनुमति नहीं देता है। अब आता है हमारा चिर परिचित मित्र एलिय्याह। यह वह पुरुष है जिसे परमेश्वर ने सदैव कठिन कार्य एवं संदेश के लिए बुलाया। वह अशांति पैदा करने वाला था, वह परमेश्वर के काम के लिए सर्वोचित व्यक्ति था। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, दूसरे इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। लिखा है, तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर। मित्रों ध्यान दे, बहुत से लोग एलिय्याह के लिए कहते हैं कि उसने लिखने का काम नहीं किया, उसे असाहित्यिक भविष्यद्वक्ता भी कहते हैं। निसंदेह बाइबल में उसके नाम से या उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, यद्यपि उसने पुस्तक नहीं लिखी, एक संदेश उसने अवश्य लिखा। उसने संदेश लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने संदेश का कारण बताते हुए आरंभ किया, तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला या मार्ग पर चला और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर चला। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय उसके 13 से 15 पद में। लिखा हुआ है, वरन इसराइल के राजाओं की लीक पर चला है और आहाब के घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा और तू अतिनियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतिनिया प्रतिदिन निकलती जाएगी। मेरे मित्रों, एलिया ही वह भविष्यद्वक्ता था जो ऐसा संदेश दे सकता था। यह एक कठोर संदेश था, परंतु ऐसा ही यहोराम को दिया जाए। संदेश की विषय वस्तु असामान्य नहीं थी। वह एक ऐसा संदेश था जिसे आप चाहेंगे कि एलिया ही उसे सुनाए, तथापि परिस्थितियां असामान्य थी। अब इससे तीन प्रश्न उठते हैं, कौन, कब और कहां। आइए हम सबसे पहले देखें कौन, एलिया। एलिया कौन है? यह संदेश यहोराम को लिखा गया था। यहोराम यहोशापात का पुत्र था। राजाओं के वृतांत में लिखा है, एलिया यहोशापात के 18वें वर्ष में स्वर्ग में उठा लिया गया था। यहोराम के युग में वह इस संसार में नहीं था, अतः यह माना जाता है कि उसने यह भविष्यवाणी नहीं लिखी। कुछ बाइबल विद्यार्थियों का कहना है कि यह एलिया दूसरा एलिया है, तिशबी एलिया नहीं। इससे मुझे स्मरण आता है कि शेक्सपियर के बारे में भी कुछ ऐसा ही विवाद है। कुछ विचारकों का यह मानना है कि शेक्सपियर के कृत्यों का लेखक फ्रांसिस बेकन या अन्य कोई और है। मुझे मार्क ट्वेन की टिप्पणी अच्छी लगी। उसने कहा, शेक्सपियर ने शेक्सपियर के कृत्य नहीं लिखे, परंतु उसी नाम के किसी और व्यक्ति ने लिखे। मेरे प्रियो, मैं एलिया के बारे में भी इसी को अंतिम उत्तर मानता हूँ। यदि वह तिशबी एलिया नहीं था तो परमेश्वर उसे स्पष्ट करता। असंभव बाधा इसमें नहीं है, जब तक कि आप अलौकिक को अस्वीकार न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इसी को अस्वीकार नहीं करेंगे, बाइबल की बहुत सी बातों को अस्वीकार करेंगे। मेरे मित्रों, अब दूसरा प्रश्न है, कब एलिया ने यह संदेश कब लिखा? क्या उसने स्वर्गरोहण के बाद लिखा? ग्रोटियस का यह मानना है कि उस पत्र में स्वर्ग की मुहर लगी है। इसे तो हम एक कल्पना समझकर अनदेखा कर सकते हैं। सबसे सरल एवं सीधी व्याख्या है कि एलिया ने स्वर्गरोहण से पूर्व इसे लिखा था। अब आप यह कहेंगे कि वह पत्र अलौकिक है, सर्वथा उचित है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, भविष्यवाणी अलौकिक ही होती है। पूर्वानुमान भविष्य को देखता है और इसी कारण वह भविष्यवाणी कहलाता है। मेरे प्रियो, हमारे पास इसके अनेक उदाहरण हैं। यशाया ने कुपुरुष के बारे में भविष्यवाणी की थी जो उसके जन्म से सदियों पूर्व की थी। दानियल ने सिकंदर महान के बारे में भविष्यवाणियां की थी। एलिसा ने हजाइल के बारे में भविष्यवाणियां की थी कि वह आराम का राजा होगा। मीका ने कहा था कि मसीह का जन्म स्थान बैतलहम होगा। केवल परमेश्वर ही ऐसी निश्चित बातों को कह सकता है, अर्थात बता सकता है। अब अंतिम प्रश्न है, कहां एलिया ने यह भविष्यवाणी कहां से लिखी थी? एलिया उत्तरी राज्य का भविष्यद्वक्ता था। इतिहास की पुस्तक में एलिया का मात्र यही एक संदर्भ है, क्योंकि इतिहास में परमेश्वर का दृष्टिकोण दिया गया है। क्या परमेश्वर एलिया से प्रसन्न नहीं था? मेरे मित्रों, निश्चय ही वह उससे प्रसन्न था। तो फिर इस वृतांत में उसके विषय अधिक चर्चा क्यों नहीं की गई है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एलिया और उसके कार्यों को भुला दिया है। परमेश्वर ने तो संपूर्ण उत्तरी राज्य के इतिहास को ही यहां अनदेखा किया है, और एलिया उत्तरी राज्य का भविष्यद्वक्ता था। यह एक ही घटना है कि एलिया ने दक्षिणी राज्य के विषय कुछ कहा है, उसने यहोशापात को भी कभी कुछ नहीं कहा, जिसका कारण था कि वह एक भला राजा था। उसे एलिया के दहकते हुए संदेश की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जब उसका पुत्र यहोराम सिंहासन पर बैठा तब यह संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अतः एलिया ने यह संदेश अपने स्वर्गरोहण के पहले लिखा था। मेरे मित्रों, एलिय्याह ने एलीशा के पास अपनी चादर ही नहीं छोड़ी थी, यह संदेश भी छोड़ा था जो यहोराम के लिए था। उसने कहा, तू उसे देखेगा, मैं नहीं। मेरे मित्रों, इससे यह प्रकट होता है कि स्वर्ग रोहन के समय तक एलिय्याह का यह संदेश पूरा नहीं हुआ था। इससे मुझे विश्वास होता है कि प्रकाशित वाक्य में व्यक्त दो गवाहों में से एक एलिय्याह ही है। वह उस युग में जब मनुष्य परमेश्वर से विमुख हो जाएगा, एलिय्याह के पास फिर एक कठोर संदेश होगा। मेरे विचार में यह धर्मशास्त्र का एक अत्यधिक कौतूहलजनक अंश है, जिसमें इस समय एक अत्यधिक असाधारण संदेश है। मेरे मित्रों, हम यहां देखते हैं कि जब यहोराम सिंहासन पर बैठा, तब संदेश उसने महल की सामने की सीढ़ियों पर पड़ा पाया। परमेश्वर के संदेश वाहक द्वारा वहां डाला गया था। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे देखेंगे यहोराम का दंड। अब हम एलिय्याह की भविष्यवाणी की निश्चितता को देखेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने पलिस्तियों को और कुशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा, और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े, और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहां तक कि उसके लहुरे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। मेरे मित्रों, आसा और यहोशापात के समय सब कुछ शांत था। अब उनकी आत्मा विचलित है, युद्ध की तैयारियां हो रही है। क्यों? युद्ध पाप का परिणाम है। हम युद्ध को युद्ध के मैदान का काम समझते हैं। मेरे मित्रों, युद्ध का आरंभ घर में होता है। उसका आरंभ मानवीय मन के पाप से उत्पन्न होता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय 18 से 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया, और कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था, और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा, और सबको अप्रिय होकर जाता रहा, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि उसकी मृत्यु कूड़े से छुटकारा पाना था। उसकी कब्र का स्थान और दफन के समय उसके सम्मान में कमी से स्पष्ट है कि वह घृणा का पात्र था। मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि उसकी रानी सर्वाधिक घृणित स्त्रियों में से एक थी जिन्होंने कभी राज्य किया हो। हम देखेंगे अहज्याह का दुष्ट राज्य। दूसरा इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लहुरे पुत्र अहज्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था, सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। मित्रों, ध्यान रखें, यहां नाम से उलझन उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कभी कभी एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम काम में लिए गए हैं। अहज्याह दूसरे इतिहास का यहोआहाज ही है, जिसे हम 21 अध्याय के 17 पद में देखते हैं। यहोराम का केवल यही पुत्र बचा है, अन्य सब पुत्र मार डाले गए हैं। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 2 से 4 पद में, इस प्रकार से लिखा है, जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था, और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्याह था जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी, और वह आहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। मेरे प्रियो, सिंहासन पर वास्तव में अतल्या ही बैठी है। सिंहासन के पार्श्व में उसी का राज चल रहा है। वह आहाज और इजेबेल की पुत्री है। वह ओमरी की दादी है। उसने अपनी सत्ता त्यागी नहीं है। आपको स्मरण होगा कि उसने अपने पति यहोराम को परमेश्वर से विमुख किया था। अब उसका पुत्र अहज्याह अपनी माँ की अगुवाई में चल रहा है। उसने उत्तरी राज्य से संधि की, आहाब के घराने से, और अपना विनाश लाया। मेरे प्रियो, अब उस पर प्रतिकार का दंड आएगा। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय उसके 5 पद में, और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था और इसराइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और आरामियों ने यहोराम को घायल किया। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि यह नाम भी उलझन उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहोराम नाम के राजा दोनों उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वही व्यक्ति फिर उभरा है, परंतु यहूदा का राजा यहोराम मर चुका है और अब उसका पुत्र अहज्याह यहूदा में राज कर रहा है और वह उत्तरी राज्य में या उत्तरी राज्य के राजा यहोराम से संधि करता है। यहोराम इस युद्ध में आरामियों द्वारा घायल किया गया है। हम देखेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 6 पद में, सो राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको आरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था, और अहाब का पुत्र यहोराम जो इज़राइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया। मेरे प्रियो, यहूदा का राजा अहज्याह यहोराम से भेंट करने गया। यहोराम इज़राइल में अपने घावों का उपचार करवा रहा था। संभवतः वह उसके लिए फल आदि कुछ लेकर गया होगा, जैसे लोग आज अस्पतालों में जाते हैं। दूसरे इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, और अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था, और जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमसी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह आहाब के घराने को नाश करे। मित्रों, यहां रोचक बात तो यह है कि येहू को मालूम नहीं था कि दक्षिण का राजा अहज्याह भी वहां है। देखिए वहां क्या हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय के 8 पद में लिखा है, और जब येहू आहाब के घराने को दंड दे रहा था, तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे जो अहज्याह के टहलुए थे मिले, और उसने उसको घात किया। ये अहज्याह के भाइयों के पुत्र वास्तव में उसके भाई नहीं थे, क्योंकि अहज्याह के तो सब भाई घात किए गए थे, जिसे हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय उसके 17वें पद में देखते हैं। अरबियों द्वारा घात किए गए थे, वे इन मृतक भाइयों के पुत्र थे। मेरे प्रियो, यहूदा के हाकिम अर्थात उसके दूर के संबंधी जो संभवतः वहां के पदाधिकारी थे, येहू ने उन सबको तलवार से घात किया। अब वह अहज्याह के पीछे जाता है क्योंकि वह भाग गया था, परंतु अंततः वह पकड़ा गया और उसे भी घात कर दिया गया। दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने अहज्याह को ढूंढा, वह शोमरोन में छिपा था, सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी कि यह यहोशापात का पोता है जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था और अहज्याह के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा। मेरे प्रियो, यह रक्तपात का युग था। परमेश्वर इसलिए यह सब लिख रहा है कि हम निश्चित रूप से जान लें कि वह पाप का दंड देता है और मनुष्य पाप करके बच नहीं सकता। यह कैसी जटिल स्थिति है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि पाप का मार्ग टेढ़ा और जटिल होता है। मेरे मित्र, आप ये न सोचे कि आप पाप करके बच जाएंगे। कोई तो है जो आपको देख रहा है और एक समय आएगा जिसका दंड आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। हम देखते हैं आगे अतल्याह का निरसंस राज। दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया। मेरे मित्रों, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि अपने ही नाती पोतों की हत्या करने वाला मनुष्य वास्तव में खूनी और शूद्र और नीच हो सकता है। यदि आप नाना दादा हैं तो मेरी भावनाओं को समझें। मैं समझता हूं कि उन्हें नाती पोते क्यों कहते हैं, वे महान होते हैं। सच तो यह है कि नाती पोते बच्चों से अधिक अच्छे होते हैं। यदि मुझे यह पता होता कि वे कैसे अच्छे होते हैं, तो मैं अपने संतान की अपेक्षा नाती पोते को मांगता। मेरे प्रियो, मैं समझ नहीं पाता कि इस खूनी रानी ने अपने नाती पोतों की हत्या किस मन से की होगी। उसने सबकी हत्या कर दी, परंतु एक बच निकला। दूसरे इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्याह के पुत्र येवास को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुरा कर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्याह की बहन थी, उसने येवास को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने ना पाई, और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही। मेरे मित्रों, यदि वह बचकर नहीं निकलता तो दाऊद का वंश समाप्त हो जाता, और मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी कभी पूरी न होती। यह स्थिति आ गई थी। मेरे मित्रों, यहां आप समझ सकते हैं कि शैतान मसीह के आगमन की वंशावली को बार बार नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। आपको स्मरण होगा कि शैतान ने मिस्र में भी प्रयास किया था कि मसीह यीशु की वंशावली को नष्ट कर दे, जब फिरौन ने सब इब्री शिष्यों का वध करने का आदेश दिया था। तब हामान के द्वारा उसने यहूदियों के सर्वनाश की योजना पारित करवाई थी। यीशु के जन्म के समय भी उसने हेरोदेस द्वारा सब बालकों के वध करने का आदेश निकलवाया था। यह भी शैतान के प्रयास का उदाहरण है कि उसने दाऊद के वंश को नष्ट करना चाहा, परंतु एक वंशज बच गया। मेरे मित्रों, बालक येवास जब छिपाया गया तब वह 1 वर्ष का था। वह मंदिर में 6 वर्ष तक छिपा कर रखा गया। इस बीच वह खूनी स्त्री राज्य कर रही थी। मित्रों, हम अब आगे देखते हैं अध्याय 23 और 24 में। विषय है येवास के राज्य काल में जागृति। येवास के राज्य काल में यहूदा ने तीसरी धार्मिक जागृति देखी। यह जागृति वृहत नहीं थी और इसका श्रेय वास्तव में याजक यहोयादा को जाता है। तो आइए देखें येवास का राजा बनाया जाना। दूसरे इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, 7वें वर्ष में यहोयादा ने हियाब बांधकर यरोहाम के पुत्र अजरियाह, यहोहानान के पुत्र इस्माइल, ओबेद के पुत्र अजरियाह, अदायाह के पुत्र मासेयाह और जिक्री के पुत्र एलिशापात, इन शतपतियों से वाचा बांधी। ध्यान दें, यहूदा के अगुए खूनी रानी अतल्याह से असंतुष्ट थे। अब यहोयादा याजक अगुओं की एक गुप्त सभा बुलाता है कि उन्हें दाऊद के एक वंशज से परिचित करवाए जो अब भी जीवित है। उन सब ने शपथ खाई कि वे दाऊद की संतान को ही राजा बनाएंगे। मेरे मित्रों, उन्होंने लेवियों और यहूदा के हाकिमों को एकत्र किया और बालक येवास के राज्याभिषेक की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, क्योंकि वह दाऊद का वंशज था। उस समूह का तीसरा भाग मंदिर के द्वार पर द्वारपाली करेगा। ये लोग सप्त के दिन वहां आते थे। एक तीसरा भाग राजा के भवन में होगा, नेव के फाटक के पास रहेंगे। वे याजक और लेवियों को छोड़ अन्य किसी को भीतर न आने देंगे। मेरे मित्रों, बालक राजा के साथ रहने वाले लेवी हथियार बंद होंगे। यहोयाद ने उन्हें मंदिर में रखे भाले, ढाल और बर्छे उन्हें दिए। ऐसी व्यवस्था की गई ताकि उसे किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम इस अध्ययन में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किस रीति से करता है। वह अपने उद्देश्य को, अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी रीति से चूकने नहीं देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने दाऊद के वंशज को बचा रखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ उठाए हैं। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
उसकी महिमा, उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। उसकी महिमा, उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई। शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। उसकी महिमा, उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। ईशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ ईशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे ईशु।